Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shruti kate wo parichay hamara nahi hai. Hamara parichay hai इसको जानने वाला। बाहर के पदार्थों को आंख देख लेती है, बाहर के पदार्थ मालूम पड़ते हैं आंख से। आंख ना हो तो बाहर के पदार्थों का मालूम होना संभव नहीं है। कान से शब्द मालूम पड़ता है, कान ना हो तो शब्द का मालूम होना संभव नहीं है। रसनेन्द्रिय से रस मालूम पड़ता है, रसनेन्द्रिय के बिना रस का मालूम होना संभव नहीं है। घ्राण से गंध मालूम पड़ता है, यदि घ्राण न हो तो गंध का मालूम होना संभव नहीं है। मन है, बहुत सारे मनोविकार और मनोगुण हमें मन से मालूम पड़ते हैं, हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है। लेकिन यदि मन न हो, जैसे सुषुप्ति में समाधि की अवस्था में मूर्छा में मन नहीं रहता है, और इसीलिए फिर हमें इन पदार्थों का बोध नहीं होता है। लेकिन आपके पास आंख है, ये आपको कई किससे मालूम पड़ता है? रूप है ये आंख से मालूम पड़ता है, लेकिन आपके पास आंख है ये किससे मालूम पड़ता है? आपके पास कान है, आपके पास नासिका है, आपके पास ये शरीर है, आपके पास मन है, आपके पास बुद्धि है, ये आपको किससे मालूम पड़ता है? जिससे मालूम पड़ता है वही तो आत्मा है। एक बार, ये बहुत पुरानी बात है, ऋषिकेश की, एक महात्मा जी थे, भिक्षु गीतानंद जी महाराज, बड़े अच्छे साधु थे। हरिद्वार में शाम के समय महात्माओं को भोजन दिया करते थे। प्रतिदिन 100 से लेके 500 तक महात्मा मैंने देखे, प्रतिदिन भोजन, और वो बैठा कर इतना प्रेम से। कभी कभी वो एक महीने का मौन धारण करके चले जाया करते थे एकांतवास में। ऋषिकेश में आए स्वर्गाश्रम, मेरे को मालूम पड़ा। मैं जब उनके पास गया, मैंने यही प्रश्न किया उनको, मैंने निवेदन किया कि महाराज, एक साधक को आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए? अपने आप, अपना स्वरूप जो आत्मा है, उसको जानने के लिए हमें चिंतन क्या करना चाहिए? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हमारे शास्त्रों में है वो उत्तर, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से उसको बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तुम एक नियम बना लो, तुमको जो भी चीज दिखाई देती है वो त्रिपुटी है, और उस त्रिपुटी का जो गेय पदार्थ जिसको आप जान रहे हैं वो आपसे अलग है। बोले और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल इतना चिंतन करो, जिसको मैं जान रहा हूं उस वस्तु से मैं अलग हूं। घट दृष्टा घटात भिन्न सर्वथा न घटो यथा, जैसे घड़े को जानने वाला हमेशा घड़े से अलग होता है, ये सामान्य नियम है। जैसे आप लोगों को मैं जान रहा हूं, इसलिए आप लोगों से मैं अलग हूं, एक सामान्य नियम। कान से मैं शब्द को जान रहा हूं, मैं शब्द से अलग हूं। मैं भोजन कर रहा हूं, रस को जान रहा हूं, रस से अलग हूं। हम पांचों ज्ञानेन्द्रियों और मन के द्वारा जिन जिन पदार्थों को जान लेते हैं, वो सारे पदार्थ हमसे अलग होते हैं। और उसके बाद फिर आप जान लो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, इसको भी तो हम जान रहे हैं, पांचों कर्मेंद्रियों को भी जान रहे हैं, पंच प्राण भी जान रहे हैं, ये शरीर को भी जान रहे हैं। इस शरीर के अंदर पांच भूत हैं, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। आपने तो जान लिया, सबको जान लिया। आपने शरीर के अंदर पृथ्वी है, इसको भी जाना, जल है इसके अंदर ये भी जाना, तेज है इसको भी जाना, वायु है इसको भी जाना, आकाश इसको भी जाना, ज्ञानेन्द्रियां जानी, कर्मेंद्रियां जानी, पंच प्राण जाने, मन जाना, ये हमारे ज्ञान के विषय हुए। और जो आपके ज्ञान का विषय होता है वो अलग होता है, आपसे अलग होता है। आप केवल इतनी युक्ति निरंतर अपने ध्यान में रखेंगे, जिसको हम जानते हैं वो हमसे अलग है, और जो जानने वाला है ना वो अलग है, वो आत्मा है, वो हमारा परिचय है। आप दृष्टा बनेंगे, फिर आप साक्षी बनेंगे, आप सुख के भी दृष्टा है, आप भोक्ता है, भोक्ता है तो दृष्टा तो बनेंगे। आप सुख को भी देख रहे हैं, आप दुख को भी देख रहे हैं, और उसका जो मूल आधार विषय उसको भी देख रहे हैं। जिन इंद्रियों के द्वारा सुख दुख का हम अनुभव कर रहे हैं उसको भी हम देख रहे हैं। आप इसका चिंतन करो, आपको मालूम पड़ेगा कि हम दृष्टा है, हम साक्षी हैं, हम सबसे अलग हैं। और धीरे 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 अभ्यास के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और वो आत्मा सच्चिदानंद घन व्यापक चैतन्य सत्तात्मक है, और वो शरीर से अलग है। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक भाव है, ये साक्षी भाव। जब बौद्ध दर्शन में, बौद्ध साधना में विपश्यना लोग करते हैं, और विपश्यना भी साक्षी की साधना है। आपको देखते जाना है, ये चीजें संवेदनात्मक, ये सारा संसार है, ये संवेदना से ये संसार अलग नहीं है। जब आप बोलते हैं ये प्रातिभाषिक है, जैसे स्वप्न में आप जितने भी पदार्थों को देखते हैं वो प्रतीति मात्र होते हैं, वो पदार्थ आप जानते हैं, जानने के अलावा उसकी सत्ता नहीं होती है। आप स्वप्न में बहुत लंबी ट्रेन देख रहे हैं, आप स्वप्न में लंबी ट्रेन देख रहे हैं, लेकिन जगने के बाद वो ट्रेन कहां चली जाती है। आप स्वप्न में बहुत सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन जगने के बाद वो सारी चीजें पता नहीं कहां जाती हैं, क्योंकि देखने के अलावा वहां कुछ था ही नहीं। आप केवल देख रहे थे, देख रहे थे वही वस्तु का अस्तित्व था, और जैसे आपका देखना बंद हो गया वस्तु का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। ये सारे पदार्थ हमारे सामने ऐसे ही है, इसी को प्रातिभाषिक सत्ता बोलते हैं, प्रतीति मात्र। आप जिस दिन साक्षी बनते हैं उसी दिन आपको मालूम पड़ता है कि सारी दुनिया प्रतीति मात्र है, प्रातिभाषिक। हमारे सामने दो शब्द हैं वेदांत के बहुत महत्वपूर्ण, एक प्रमाता और दूसरा साक्षी। प्रमाता का अर्थ होता है माता, पर माने अच्छी प्रकार से, और माता माने नापने वाला। हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं, और बाहर जाकर के बाह्य पदार्थों को नाप लेती हैं, उसका आकार नाप लेती हैं, प्रकार नाप लेती हैं, उसकी बहुत सारी चीजें नाप लेती हैं, क्योंकि बिना नापे वस्तु का जानना ही संभव नहीं है ये वस्तु क्या है। ये नहीं मालूम पड़ेगा कि स्त्री है कि पुरुष है, छोटा है कि बड़ा है, अच्छा है कि बुरा है, ये बिना नापे आपको मालूम कैसे पड़ेगा। इसलिए हमारी इंद्रियां बाहर जाके वस्तु को नाप लेती हैं और नापने के बाद वो वस्तु मालूम पड़ती है कि ये वस्तु क्या है, स्त्री है पुरुष है, अच्छी है बुरी है, और उसके बाद वो चीज हमारे अंदर संस्कार बनकर आ जाती है। इसी को तो प्रमाता बोलते हैं। प्रमाता माने जीव, जो बाहर के पदार्थों को हमेशा नापता रहे। और साक्षी का मतलब होता है जो बिना नापे देखे। देखना तो दोनों जगह पर है, लेकिन एक नाप के देखता है, दूसरा बिना नापे देखता है। और जब नाप लेते हैं ना तो वस्तु छोटी मालूम पड़ती है या तो बड़ी मालूम पड़ती है, लेकिन आप बिना नापे देखो तो आपको छोटी मालूम पड़ेगी कि बड़ी मालूम पड़ेगी। सुखदेव जी महाराज जी जा रहे थे वन में, भाग रहे थे संन्यास लेने के लिए जा रहे थे। ये बहुत मजेदार घटना है, ये वेदांत की बहुत ऊंची घटना है। सुखदेव जी महाराज जी जा रहे हैं और वहां नदी पर बहुत सारी स्त्रियां नवयुवतियां स्नान कर रही हैं। और जैसे वहां से सुखदेव जी महाराज जी निकल गए, उन्होंने देखा कोई एक नव युवक यहां से गुजर रहा है, और सुखदेव जी महाराज जी ने भी देखा कि बहुत सारी नवयुवतियां स्नान कर रही हैं। बड़ी अद्भुत घटना है, दोनों दोनों को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के इंद्रियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दोनों की इंद्रियों में कोई विचलन नहीं है, कोई फिसलन नहीं है। घटना बहुत सामान्य से घट गई। न स्त्रियों ने अपना स्नान करना छोड़ा वस्त्र पहने, और न सुखदेव जी महाराज वहां से जाने से बचने की कोशिश की, नहीं तो सुखदेव जी महाराज को रास्ता बदलना था। रास्ते पर रुक जाते, एक सामान्य आदमी भी देख लेता है कोई स्नान कर रहा है, वस्त्र नहीं है, रुक जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात, दोनों में ऐसी अनायास घटना घट गई और उन स्त्रियों ने भी वस्त्र नहीं पहने, और वहां कोई नियोजन नहीं था, कोई आयोजन नहीं था, वहां कोई सोच भी नहीं था, एक अनायास घटना घटी। लेकिन जैसे व्यास जी महाराज वहां से गुजरने लगे, व्यास जी महाराज भी सामान्य पुरुष नहीं है, वो भी भगवान के अवतार हैं, परम ज्ञानी हैं। लेकिन जैसे वहां से गुजरने लगे, स्त्रियों ने अपने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, स्त्रियों ने वस्त्र पहना या नहीं पहना क्या मतलब था, लेकिन व्यास जी को मालूम पड़ा कि मेरे को देख करके इन्होंने वस्त्र पहने और मेरे पुत्र को देख करके इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, भेद पैदा हो गया। नहीं तो सुखदेव जी महाराज जी को भी यूं जाना चाहिए था, जैसे व्यास जी महाराज जी को वैसे ही जाना चाहिए था, वस्त्र पहने क्या, वस्त्र नहीं पहने क्या। दोनों संबुद्ध है, दोनों भी ज्ञानी है, लेकिन सुखदेव जी महाराज जी की उपस्थिति और उपस्थिति के साथ बोलने की जरूरत नहीं, उनके अध्यात्म का इतना प्रभाव, उनकी निश्चल मनोवृत्ति का इतना प्रभाव कि सामने वाले के मन में भी निश्चलता पैदा हो गई, सामने वालों के मन में भी ये भाव पैदा ही नहीं हुआ कि कोई नग्न पुरुष हमारे यहां से गुजर रहा है, नवयुवक है और हमें वस्त्र पहनना चाहिए, ये बात ही उनके मन में नहीं आई। लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी व्यास जी महाराज जी के मन में इतनी बात उठी, ज्ञान में कोई अंतर नहीं लेकिन व्यवहार में अंतर हो गया, ये साक्षी भाव। सुखदेव जी महाराज जी का भाव साक्षी भाव है और साक्षी भाव में प्रमात्री होने का कोई संस्पर्श नहीं है। साक्षी नहा का विकारिता, साक्षी में कोई विकार नहीं, विकार तो प्रमाता में है, विकार तो जीव होने में है। क्योंकि जहां पर भी प्रमात्रिता है, जीव भाव है, वह इंद्रियों के द्वारा नापने की मनोवृत्ति है। आदमी जब जाता है तो देखना शुरू कर देता है और देखते देखते नाप लेता है, बहुत सारी चीजें नाप लेता है और उस समय उन्हें मालूम पड़ने लगता है ये स्त्री है, ये व्यास जी को मालूम पड़ा ये स्त्री है, उन्हें मालूम पड़ा ये नग्न है, उन्हें मालूम पड़ा कि ये नवयुवती है, उन्हें मालूम पड़ा कि मैं वृद्ध हूं। ये मालूम कैसे पड़ा, उन्हें मालूम क्यों पड़ा कि ये स्त्रियां नग्न है और मैं वृद्ध पुरुष यहां से गुजर रहा हूं, कि अपनी अवस्था का बोध, उनके नग्नता का बोध क्यों हुआ। ये नापे बिना संभव नहीं, इंद्रियों ने नापा जाना, ये जीव भाव है। और सुखदेव जी महाराज जी यूं चले गए, वहां साक्षी भाव है, देखने की प्रक्रिया दोनों में है, मालूम दोनों को पड़ा। लेकिन आप सुखदेव जी महाराज जी को पूछो, सुखदेव जी महाराज जी बच्चे की तरह हैं, कोई संस्कार नहीं है। सुखदेव जी महाराज भूल भी गए कि हमने रास्ते में क्या देखा, क्या था। एक बार बुद्ध को किसी ने पूछा, यहां से स्त्री गुजरी है, आपने देखा है? बुद्ध ने कहा देखा तो जरूर, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो स्त्री थी कि पुरुष, वो नवयुवती थी कि वृद्ध, वो काली थी कि गोरी, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखा तो जरूर है। हमारे मन में जो उत्सुकता है, देखने की उत्सुकता, ये जीव भाव है और वो देखने की उत्सुकता पैदा करती है, बाहर स्त्री को पैदा कर देती है और आश्चर्य की बात नहीं होने के बाद भी पैदा कर देती है। कई बार आदमी को देख करके भी स्त्री का भ्रम हो जाता है, कई बार पेड़ पौधों को देख के भी स्त्री का भ्रम हो जाता है, क्योंकि उत्सुकता है, वासना है, कि हमारा मन बाहर के पदार्थों को खड़ा कर देता है। इसलिए बहुत ज्यादा ये जो नापने की प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो उत्सुकता है देखने की, यह हमें और उत्सुकता में ले जाती है, हमारे अंदर और उत्सुकता पैदा करती है। इसलिए हमारे इंद्रियों में जो जीव भाव है, इस जीव भाव का बाध, जीव भाव का निराश साक्षी भाव के द्वारा होता है और ये साक्षी भाव है केवल देखने का भाव। हम सबको देखे, शांति से बैठ करके देखे, हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, ये शरीर है, मैं दृष्टा हूं और ये सारी चीजें देखते जाए। एक ऋषिकेश में महात्मा थे, ब्रह्म प्रकाश जी, एक आश्रम भी है छोटा सा। जब शरीर छूट रहा था उनका, शरीर में बहुत सारे रोग थे, किसी महात्मा ने आके पूछा कि आप तो जीवन भर वेदांत का चिंतन करते रहे और इस समय आपका शरीर छूटने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? महात्मा जी हंसे और उन्होंने कहा कि जैसे तुम देख रहे हो वैसे मैं भी देख रहा हूं, जैसे तुम देख रहे हो शरीर छूट रहा है वैसे मैं भी देख रहा हूं कि शरीर छूट रहा है। बहुत कीमती बात बोली महात्मा जी ने, जैसे तुमको लगता है कि शरीर छूट रहा है वैसे मेरे को भी लगता है कि शरीर छूट रहा है, ये शरीर मर रहा है, मैं देख रहा हूं। अच्छी प्रकार से देख रहा हूं कि ये शरीर है और ये शरीर पैदा हुआ है, ये शरीर मरेगा, इसका परिवर्तन और परिवर्तन का साक्षी मैं हूं, इसलिए हर एक चीजें छूटने वाली है। ये शरीर तो मरने वाला है और मैं तो आत्मा हूं, सच्चिदानंद घन, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं उन्हें भी बहुत मृत्यु का डर लगता था। ज्योतिषियों ने कहा था कि 21 वर्ष की उम्र में तुम मरोगे, और जैसे जैसे 21 वर्ष नजदीक आने लगे बहुत चिंतित हो गए, मृत्यु का भय था, और वो महात्माओं के पास जाके पूछते थे 21वें वर्ष में मैं मरने वाला हूं, कोई उपाय है कि मैं मरूं नहीं। महात्माओं ने महाराज श्री को कहा कि हम तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकते, क्योंकि शरीर का मरना तय है और इसकी मृत्यु अवश्य होनी है, हम इसको टाल नहीं सकते, शरीर की मृत्यु को टालना संभव नहीं, लेकिन तुम्हारे भय को दूर कर सकते हैं। और सचमुच महाराज श्री छाती ठोक के कहते हैं महात्माओं ने मृत्यु का भय दूर कर दिया, महात्माओं ने बता दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षी हो, इस शरीर के भी और इस शरीर में घटने वाले परिवर्तन के भी, जन्म के भी और मृत्यु के भी। एक सुकरात का दृष्टांत बड़ा सुंदर है, सुकरात ने कुछ बातें बोली, लोगों ने उन्हें मृत्युदंड दिया, जहर का प्याला भर के दिया और वो पीने लगे, उनके शिष्यों ने कहा क्या हंस रहे हो, जहर पीने के बाद कोई हंसता नहीं है, लेकिन वो हंस रहा था, शिष्यों ने कहा क्या आप हंस रहे हैं, सुकरात ने कहा कि मैंने सुना है मृत्यु होती है लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं, लोगों से सुना है मृत्यु होती है, ये लोगों से सुना है, मैंने आज तक किसी को मरते हुए देखा नहीं। ध्यान देना, हम लोगों ने तो देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा। उन्होंने कहा कि मरना क्या होता है, हम तो अंदाजा लगाते हैं कि ये मर गया, लेकिन मरना क्या होता है, बोले बिना मरे कैसे जानेंगे हम कि मरना क्या होता है, बिना सोए कैसे जानेंगे कि सोना क्या होता है, बिना जगे कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि जगना क्या होता है, आप देख रहे हैं दूसरा सो रहा है तो आप जान रहे हैं सोना क्या है, कोई आदमी आंख बंद करके सो रहा है खराटी की नींद में और आप समझते हैं कि हम जान रहे हैं ये सो रहा है, लेकिन बिना सोए सोने का भाव क्या है ये जानना संभव नहीं, बिना स्वाद लिए स्वाद को जानने का कोई उपाय नहीं है, दूसरा रसगुल्ले खा रहा है बैठ के तो आपने जाना रसगुल्ले का स्वाद क्या होता है, आप जब तक खाएंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक जिएंगे नहीं तब तक जीने का स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक मरेंगे नहीं तब तक मरने का स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा, मरना क्या चीज है। सुकरात ने कहा कि मैं मर के देखना चाहता हूं मरना क्या होता है, और अंत में सुकरात ने यही घोषणा कर दी कि भैया मरना नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी और मृत्यु संभव नहीं है, ये तो शरीर, ये परिवर्तन है, ये शरीर जो भी मृत्यु मृत्यु कहते हैं ये शरीर की है, आत्मा की नहीं है, मैं तो दृष्टा हूं, और इतना जानने के बाद किमत्र परिशिष्यते, एक बार आत्म तत्व को जानने के बाद जानना शेष नहीं रहता है, फिर साधक चरम अनुभूति आत्म तत्व की और वो मोक्ष जिसको आप बोलते निर्वाण, वासना का निर्वाण, भय का निर्वाण, ये निर्वाण क्या है, ये वासना का निर्माण है, वासना से मुक्ति है, भय से मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति है। और इसको जानने के बाद शेष कुछ नहीं रहता है। किमत्र अवशिष्यते एतद्वैतत्, यही है, यही है, यही है।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।